الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج ہم سورة الفرقان آیت نمبر 21 سے 24 تک کریں گے انشاءاللہ. 18ویں پارے پہ پہلے جو پچھلی دفعہ کی آیات ہیں وہ ذرا دیکھیے. لاسٹ ٹائم کچھ دو سوال تھے جو آپ سے کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو باتیں پوچھی تھی. کچھ سوچا آپ نے ان کا جواب؟ ایک تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کل اذالک خیرن، کیا یہ بہتر ہے یا جنت خلد؟ اور دوسرا آخر میں بھی سوال کیا آپ سے، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو بات یہ، ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا، جی الحمدللہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، جو عذاب تھا جہنم والوں کے لیے وہ سننا بھی اتنا تکلیف دہ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کسی کو، یعنی اگر تصور میں لائیں اس چیز کو، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو باندھ کے اوون میں ڈال دیا ہو اور دروازہ بند کر دیا جائے. ذرا سوچیں، ہمیں 2-3 گھنٹے یہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو تھک جاتے ہیں، حالانکہ باندھا کسی نے نہیں ہوا لیکن تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو انسان کو باندھ دیا جائے، وہی اٹ سیلف اس کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ باندھ کے پھر اس کے بعد اوون میں ڈال کے اور دروازہ بند کر دیا جائے. اور پھر تکلیف بھی ایسی ہے، عذاب بھی ایسا ہے کہ بجائے کم ہونے کے یا بجائے اس سے یوز ٹو ہونے کے، جیسے ایک بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بعد انسان وہاں پہ یوز ٹو ہو جائیں گے، جی تو اس میں تو اور اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اسپیشلی جب گرمی کے دن ہو، شدید گرمی ہو، اس وقت اس کی بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے. جب بھی آپ کو گرمی لگے نا تو اس کی طرف دھیان جانا چاہیے. اسی طرح آپ کی طرف آج کل سردیوں کے دن ہیں، تو سردیوں میں بھی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کا ایک عذاب سردی کا بھی ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گرمی کے موسم میں، شدید گرمی کا جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور اپنی آنکھ آسمان والوں اور زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں. تو جب کوئی بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی سخت گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر نار جہنم، کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے میری پناہ طلب کی ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو پناہ دے دی. اور جب شدید سردی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور اپنی آنکھیں آسمان والوں اور زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں. جب کوئی بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، ہم تو بس اتنا ہی کہہ کے رک جاتے ہیں نا، تو جب وہ بندہ آگے کہتا ہے نا اللہم اجرنی من برد زمحریر، اس جگہ کا نام زمحریر ہے اصل میں، تو جب وہ کہتا ہے اللہم اجرنی من بردی، اے اللہ مجھے ٹھنڈک سے، جو سردی ہے زمحریر کی، اس سے پناہ دینا، تو اللہ تعالیٰ زمحریر سے فرماتے ہیں بے شک میرے، یہ کیونکہ یہ طبقہ ہے جہنم کا، ایک طبقہ، ایک سیکشن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیرے زمحریر سے پناہ طلب کی ہے، بس میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو پناہ دے دی. تو یہ دونوں ہی عذاب ایسے ہیں، ہم تو صرف یعنی اتنا ہی بول دیتے نا، بہت سخت گرمی ہے، ہائے آج ٹھنڈ کتنی ہے، کتنی دفعہ ہم یہ کمنٹ دیتے ہیں نا، آج کتنی سردی ہے، لیکن آگے بھی بولنا ہے، جب آپ کو سردی محسوس ہو تو آگے ضرور یہ کہیں اللہم اجرنی من بردی زمحریر. تو اس دعا کو اپنے پاس لکھ لیں، اور اللہم اجرنی من النار، یہ تو سبھی کو آتی ہے، تو اگر نہیں یہ بھی آتی اللہم اجرنی من حر ناری جہنم، تو اللہم اجرنی من النار ہی کہہ دیا کریں. तो इससे फिर क्या हमारी, जब ये आपने पढ़ा तो उस बात सोचें कि कितनी हमारी दुआ होनी चाहिए इस सिलसिले की, कि हम अपने आप को आग से बचाने के लिए अल्लाह से खूब खूब दुआएं करें और अपने अंदर खुदा खौफी पैदा करेंगे, तो तभी ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत ज़्यादा बेहतर है, क्या इनको जन्नत चाहिए, क्या ये ज़्यादा अच्छा है या वो अजाब ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका वादा तो मुत्तकीन से है, तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। और फिर जो आखिर में अल्लाह ताला ने पूछा ना, अतस्बिरून, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पे भी आप जिन भी हालात में, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी सिचुएशंस में होती हैं कि इंतहाई तकलीफ होती है, तो कोई भी आपके हालात बदलने की कुदरत नहीं रखता ना। हालात तो अब कुछ ऐसे लोगों के मसाइल होते हैं कि जो चेंज नहीं हो सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त रोएं धोएं, हर वक्त गिले शिकवे करने में वक्त ज़ाया करते रहें, मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक दूसरे के लिए इम्तिहान है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार ही हों, गैर लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए इम्तिहान हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, और बहुत प्यारे रिश्ते भी हो सकते हैं। अब माँ और औलाद का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, मगर वो भी एक इम्तिहान का रिश्ता है। तो ज़रूरी नहीं कोई ऐसा ही रिश्ता हो जिसमें जो आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं जो पसंद नहीं होता, आप कहते हैं ये मेरे लिए इम्तिहान बन गई है, लेकिन बहुत प्यारे रिश्ते भी इम्तिहान ही होते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने देखना है कि आपने क्या करना है, और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इम्तिहान उस वक़्त हो जाता है जबकि हमारे आपस में मिजाजों में फ़र्क होता है, जबकि हमारी आपस में सोच में फ़र्क होता है। कभी एक घर में रहने वाले शौहर बीवी के दरमियान सोच का इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, सास बहू के दरमियान होगा, नंद भावज के दरमियान हो सकता है, तो इन रिश्तों में अब रिश्तों को तोड़ के तो नहीं जी सकते हम, क्या करना है? अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? सब्र ना भी किया तो सिचुएशन ने बदलना तो नहीं है, लेकिन सब्र कर लिया ना तो अजर भी मिलेगा और जिंदगी में आप सुखी भी रहेंगे। सब्र क्या चीज है? सब्र है बर्दाश्त करना, सह जाना, जाने देना। हम जाने नहीं देते ना बात को। हर इंसान में कमियां कोताहियां होंगी, हर इंसान में ड्रॉबैक्स होंगे, शॉर्टकमिंग्स होंगी, लेकिन हमें उनके साथ रहते हुए, साथ चलते हुए, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते चले जाना है, यही सब्र है। और सब्र आखिरी लम्हे तक करना है, ये ना कभी कहें कि बहुत सब्र कर लिया हमने, अब इतने साल सब्र कर लिए, अब नहीं सब्र होता, नहीं, क्या पता ज़िंदगी इतनी नहीं रह गई, क्या पता अब और थोड़ी जिंदगी रह गई हो और आप ये कह के अपना सबर का पिछले का भी अजर गंवा दें। तो एक तो ये हो सकता है आप लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं, बिल्कुल किसी से मिलें जुलें ही नहीं, तो तब भी आपके, मैंने आपको बताया था कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, मसलन औलाद का रिश्ता है, शौहर का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, उनको तो तोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते ना, वो तो साथ चलेंगे। तो आप बाकी सबसे कट ऑफ भी हो जाएं तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनके बगैर नहीं आप रह सकते, तो वो तो बदस्तूर आपके लिए इम्तिहान बने रहेंगे। तो बाकी लोगों के साथ भी अगर आप मिलें जुलेंगे, तो जैसे हदीस में कि जो मोमिन लोगों से मिलता जुलता है और उनकी तरफ से जो आने वाली तकलीफें होती हैं उन पे सब्र करता है, वो बेहतर है उससे जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है और ना ही उनकी तरफ से आने वाली ईजाओं पे सब्र करता है। तो आप बेहतर में शामिल होना चाहते हैं, आप अजर लेना चाहते हैं, इम्तिहान है लेकिन इसका अजर भी है, और इम्तिहान से बच नहीं सकते, प्यारे रिश्तों के जरिए भी इम्तिहान ही है। तो जहां पे भी हम हैं, जिस भी यानी रिश्ते में हम बंधे हैं, चाहे हम हमसाए हैं, चाहे हम दोस्त हैं, कहीं माँ हैं, कहीं बहू हैं, कहीं सास हैं, कहीं बीवी हैं, ये सारे रिश्ते सब्र मांगते हैं। आप कहते हैं ना सिर्फ माँ होने के लिए बड़ा सब्र चाहिए, लेकिन आप देखें गौर करें तो हर रिश्ते में सब्र चाहिए, किसी रिश्ते में भी इतना ज़्यादा दूसरे को यानी जिच ना कर दे कि वो भी सब्र का दामन छोड़ दे और एक आप उसको इतना ना आजमाए किसी भी रिश्ते को। तो ये दो सवालात थे जिन पे आपने गौर करना था इस हफ्ते में, और उम्मीद है कि आपने किया होगा और आपको जवाब मिले होंगे। तो वंस एंड फॉर ऑल हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। याद रखें जैसे हमें पिछली क्वेश्चन का आपको कहा, जन्नत का रास्ता एक तरफ है और जहन्नम का बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों मंजिलें डिफरेंट है ना, कोई कंपैरिजन है दोनों में? कोई मुमासलत है दोनों में? बिल्कुल नहीं ना। एक सख्तरीन अजाब है, दूसरा नेमतों भरी जगह। अब जब ये मंजिलें इक्वल नहीं है तो इनके रास्ते भी सेम नहीं है, रास्ते डिफरेंट है। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कहे कि जी एक तरफ एक रास्ता है, उसमें बड़े मज़े हैं और बहुत ही फन प्लेसेस हैं और बहुत कुछ है और बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसके एंड पे जाके ना, और वो कौन बता रहा है आपको? जो उस जगह का गाइड है, वो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता है। अब आप गाड़ी लेके चली हुई हैं, वो आपको बताता है जी आप अगर लेफ्ट मुड़ जाते ना, बहुत मज़ेदार रास्ता है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा स्मूद है और बहुत फन है उसमें, लेकिन एंड में जाके क्या है, एक बहुत गहरी खाई है। आपने कभी देखा होगा कि चलते चलते गाड़ी ऐसी जगह पे पहुंच जाती है, वहां पे आगे बहुत नीचे खाई होती है, अगर वहां पे ब्रेक ना लगे तो गाड़ी नीचे चली जाती है। तो वो आपको बताता है कि वहां पे इतनी गहरी खाई है और मुड़ने का रास्ता कोई नहीं है, फिर वापस नहीं मुड़ सकते। और दूसरा रास्ता है, बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, अंधेरे भी हैं उसमें और बहुत बम्प्स भी लगेंगे, जंप्स भी लगेंगे, सड़क भी जगह जगह से टूटी फूटी भी होगी और बड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन एंड में ना उसके बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी ऐसी जगह है, उसमें बहुत कुछ है, बड़ी नेमतें हैं, बहुत मज़े हैं, खूब फन है, और वहाँ से भी गाड़ी वापस नहीं आ सकती। आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, राइट वाला या लेफ्ट? आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, रास्ते में थोड़ा बहुत अगर मुश्किल आई भी, लेकिन एंड में तो बहुत अच्छा है ना, और इसमें वहाँ पे खाई में गिर गए तो क्या फ़ायदा फिर सारे रास्ते, अगर फन मिल भी गया तो। यही बिल्कुल जन्नत और जहन्नुम के रास्तों का, जिसका अल्लाह ताला ने आपसे सवाल किया, तुमने किस तरफ जाना है, तुम कौन सा रास्ता लेना चाहते हो, तुम्हें ये जहन्नुम में जाना है, ये बेहतर है या वो जन्नत बेहतर है? तो सवाल आपके सामने रख दिया गया, और जवाब देने से इतनी आसानी ज़रूर हो जाएगी कि आपने डिसाइड कर लिया, फिर उसके लिए कमर बांध सकते हैं। और जिसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि किस तरफ को जाना है, वो तो वहीं खड़ा ही रहेगा, ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी, उसको पता ही नहीं है किधर को जाना है, वो लॉस्ट है। तो वो गाइड जिसने बताया है ना, वो हमारा रब है, उसने हमें बताया, जो हर रास्ते को जानता है कि कौन सा रास्ता सही है, जिसमें हमारे लिए बेहतरी है। अब हमने जहाँ बात ख़त्म की थी वहाँ पे यही था ना कि जो काफिरों के इतराज़ात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, बाज़ारों में चलते फिरते हैं और ये है खाते पीते हैं, तो हमारे जैसा ही इंसान है, इसमें क्या कोई ख़ास बात है, ना इसके साथ कोई फरिश्ते हैं, ना इसके साथ पास कोई ख़जाने हैं, कोई बाग होता, कोई कुछ होता, यानी क्योंकि इंसानों की नज़रों के अंदर हमने आज के वक्त में यही अपने, आज भी यही स्टैंडर्ड्स हैं, पहले भी यही स्टैंडर्ड्स थे, कि किसी के पास माल होना ये बताता है कि ये काबिले इज़्ज़त है, या ये ही है जिसके ऊपर कोई बहुत अल्लाह का करम है, जिसके पास माल नहीं है तो इसका मतलब है पता नहीं ये अल्लाह की नाराज़गी है इसके ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है, और यहाँ पे भी कुछ और उनकी बातें कही गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, और कहा उन लोगों ने जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की। यहाँ पे ये नहीं कहा गया काफिर कहते हैं, कहा गया जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जिनको ये होप नहीं है, जिनको ये यकीन नहीं है कि उन्होंने आखरत में अल्लाह से मुलाकात करनी है,
वो क्या कहती हैं, लौला उन्जिला अलैना अल मलाइकातु, क्यों नहीं हमारे ऊपर क्यों नहीं फरिश्ते आ जाते। एक इसकी वजह क्या थी, एक इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें क्या ऐसी खास बात है कि फरिश्ते इसके पास वही लेकर आ रहे हैं और हम हमारे जैसा ही इंसान है ना, तो हमारे पर क्यों नहीं आ जाते फरिश्ते, हमारे पास आए और हमें बताएं। या फिर दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि फरिश्ते आके खुद हमें बताएं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हम इनको नबी मानेंगे, वरना नहीं हमने मानना। ये दोनों माने हो सकते हैं। तो क्या उनकी डिमांड क्या थी, दो डिमांड्स हैं जो इस आयत में, एक क्यों नहीं हमारे पर फरिश्ते नाजिल होते, दूसरी औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देख लेते, हम अपने रब को हम क्यों नहीं देख सकते, हमें दिखाया जाए और फिर अल्लाह ताला हमें आके बताए कि ये मेरा रसूल है तो फिर हम मानेंगे। नहीं, आप देख रहे हैं कि कितनी बेबाक और कितनी, यानी ऐसी बात है कि जिससे इंसान लरज जाता है कि कोई इतनी बेबाकी से ये कहे कि मुझे दिखाओ रब, दिखाओ तो मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मैंने मानना। और ये कौन कर सकता है, ये ऐसी डिमांड कौन करेगा जिसको आखरत की मुलाकात का यकीन ना हो, जो आखरत का मुनकर हो। क्योंकि जिसको अल्लाह की मुलाकात का यकीन होता है ना, वो ऐसे जाहिलाना सवालात नहीं करता और ऐसी डिमांड्स नहीं करता, उसकी जरूरत ही नहीं हो सकती। वो तो बेचारा हर वक्त कांपता ही रहता है, हर वक्त फिक्र में ही रहता है, उसको कहाँ ऐसी चीजों की फुर्सत है। और आजकल भी जो खुद को बड़े लिबरल लोग, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और फिर इस्लाम के ऊपर इतने ज्यादा बहसें करते हैं और शक को शुभात करते हैं, ये क्यों ऐसे और वो क्यों ऐसे, ये भी इस बात का साइन है, इस बात की अलामत है कि उनके दिल में आखरत का सच्चा यकीन नहीं है। जिसको यकीन होना कि मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है, वो डर जाएगा, उसके मुंह से ये बातें निकलेंगी ही नहीं, उसकी जुर्रत ही नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद इस्तकबरू फी अनफुसिहिम, और अलबत्ता तहकीक उन्होंने तकबर किया अपने नफ्सों में। असल बात ये है, अपने आप को ये बहुत बड़ी चीजें समझते हैं, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना कि हमें अल्लाह दिखाया जाए, हमें खुदा को दिखाया जाए, फरिश्ते हमारे पास आ जाए और आके हमें बता दें तो हम मान जाएंगे। अब आप देखिए, तो ये वही इंसान कर सकता है जो अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है ना, वो तो फिर कहता है ये मुंह और मसूर की दाल, वो तो ये कहता है ना। ये मुहावरा सुना होगा आपने कि मैं कहाँ और कहाँ मेरी क्या औकात है कि मैं ये बात बोलूं। पता है ना आपको कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सरदार गए थे बनी इसराइल में से, उन्होंने जाके वहां पे कहा था ना कि हमें अल्लाह ताला को दिखाया जाए, तो फिर हशर उनका क्या हुआ था, रेजा रेजा हो गए थे, उसी वक्त मर गए थे, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चाहा था अल्लाह को देखना, मगर खैर उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि हम देखेंगे तो यकीन करेंगे, वो आके हमें बताए, इस तरह की बदतमीजी नहीं की थी। ये उनका शौक था, दीदार का शौक, वो एक बिल्कुल अलग बात है कि अल्लाह हमें शौक है तुझे देखने का, लेकिन फिर भी ताब ना ला सके एक तजल्ली की भी। तो इस दुनिया में तो कोई अल्लाह ताला को देख नहीं सकता इन आंखों के साथ। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जो इनकी डिमांड्स है ना, इनकी डिमांड्स देखो, इनसे पता चलता है कि इनमें तकब्बुर भरा हुआ है। आता उतुवन कबीरा, और उन्होंने सरकशी की, बहुत बड़ी सरकशी, यानी ये तो हद से गुजर गए हैं। तकब्बुर है एक तो इनके अंदर, खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और फिर किसी हद पे नहीं रुके हुए। देखिए हद हदूद इन्होंने क्रॉस कर ली हैं, हदें पार कर ली हैं। आप देखिए ये उस वक्त की बातें हो रही हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की दावत दे रहे हैं, और अहले मक्का जो हैं वो इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, दुख देने वाली बातें करते हैं। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर ख्वाही, मोहब्बत, सब्र का सिंबल। अगर दोनों ग्रोहों के दरमियान आप देखें ना, तो जुल्म करने वाला क्यों जुल्म कर रहा है, कोई जाती उनको तो किसी ने नुकसान पहुंचाया था ना, इनका माल किसी ने हथिया लिया था, ना इनकी इज्जत पे हरफ आया था, किसी एतबार से इनको नुकसान तो नहीं कुछ दिया था, फिर इनको दुश्मनी क्यों थी? दुश्मनी की वजह क्या थी? सिर्फ ये कि अगर हम इस बंदे की बात मान लेंगे तो हमें छोटा होना पड़ेगा। हम छोटे कैसे हो जाएं? और लोगों की साइकोलॉजी एक ही है, चाहे आज हो चाहे उस वक्त। जब दावत देने वाला दावत देता है जमीन के किसी खित्ते में भी, तो सेम ही रिजल्ट होते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोगों में तकबर इतना भरा होता है वो किसी की नहीं मानना चाहते, अपनी जात अपनी राय अपनी बात को सबसे ऊपर समझते हैं, वो इनकार कर देते हैं। और कुछ सिर्फ इनकार ही नहीं करते, वो हद से बढ़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनकी दुम पे पाऊं आ गया। जब दुम पे पाऊं आता, देखा क्या रिएक्शन होता है किसी का? तो अहले मक्का जो थे ना, वो इतने अजियत में पड़े हुए थे कि ये हमें बातें क्यों बताई जा रही हैं। अब देखें, शैतान ने भी तकबर किया था। सबसे पहला उसका जो जुर्म था ना, वो यही था ना, उसने कहा था अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और फिर देखें इस तकबर ने उसको कहां तक पहुंचा दिया। ये जो बड़ा बनने की ख्वाहिश है और खुद को बड़ा समझना, खुद को कोई चीज समझना, और कभी कभी इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो दिल ही दिल में अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहा होता है। या तो खानदानी तौर पे बहुत बड़े, या जो शैतान इंसान को, जो नेक लोग होते ना, उनको किस तरफ से आके पकड़ता है, उनके दिल में ये ख्याल डालता है कि तुम बड़े ही नेक हो, थोड़ा बहुत भी कुछ काम कर लिया, कुछ कुरान पढ़ लिया, कुछ तुम बड़े नेक हो, तुम्हारे जैसा कोई नेक हो सकता है? और आपको पता भी नहीं होता, चोर दरवाजे से वो आ जाता है और आपके दिल में ये ख्याल डाल देता है कि बस दुनिया सारी तो इतनी बुरी है, ये सारे बड़े गुनाहगार हैं, और मैं तो पता नहीं कितनी नेक हूँ। ये ख्याल आया और इंसान डूबा। तकब्बुर है ही क्या? दूसरों को हकीर जानना, हक का इनकार और लोगों को हकीर जानना। जब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं तो क्या होता है? फौरन आपकी नजर में सारे छोटे छोटे बोने नजर आने लगते हैं, छोटे छोटे बोने हो जाते हैं, सारे बहुत छोटे, मैं उनमें सबसे बड़ी, मैं इनमें सबसे आला, मैं इनमें सबसे नेक। किसी को अपनी खानदान तकब्बुर में डाल देता है, किसी को अपना स्टेटस डाल देता है, किसी को अपना हुसन डाल देता है, किसी को अपना इल्म डाल देता है, और किसी को अपनी नेकी डाल देती, किसी को अपनी इबादत डाल देती तकब्बुर में। तो तकब्बुर के भी तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें इंसान को, हर एक को डिफरेंट चीज़ तकब्बुर में डालती है। हम देखिए हमारे अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं छुपा हुआ? क्योंकि जो मुतकब्बिर होगा ना, एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर दिल में आ गया ना कि मैं कोई चीज़ हूँ, मेरे अंदर कोई नेकी है, मेरे अंदर बहुत तकवा है, मेरे अंदर फलां चीज़ बहुत, तो राई के दाने के बराबर भी हुआ जन्नत में नहीं जा सकता। अपने आप को हमेशा झुका हुआ रखें, अपनी बड़ाई के एहसास में ना रहें, मैं बड़ी, मेरा इल्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मैं किसी से क्यों कुछ सीखूं, मैं तो खुद ही इतनी बड़ी चीज हूं। ये तकब्बुर ही तो है। मैं क्यों किसी की बात में आऊं, मैं क्यों किसी की राय को अहमियत दूं, मेरी तो अपनी राय बहुत अहम है, मैं क्यों किसी का मशवरा मानूं, मैं तो खुद ही इतनी अकलमंद हूं। ये सब तकब्बुर ही तो है। ये जो मैं है ना, ये मैं, यही तकब्बुर है। तो ये वो लोग कर रहे हैं जो आखरत की मुलाकात का यकीन नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते। और दूसरा इसका माना ये भी है कि खौफ नहीं रखते ना, जो मैंने आपको बताया रिजा का एक माना क्या है, खौफ, कि इनको खौफ नहीं है, इनको डर नहीं है। अगर डर होता तो ऐसी बात ना करते। हम अपने अंदर झांक के देखें, हमें कितना डर है कि अल्लाह से मुलाकात होनी है। क्या हर काम करते हुए ये बात दिल में होती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मुझे इससे मुलाकात करनी है? ये अगर यकीन हो ना तो एकदम दिल कांप जाता है। ये यकीन ही तो खत्म हो चुका है। और आप देखें ये रकू ना बहुत ही अहम रकू है इस सूरह का, सूरह फुरकान का, ये जो पहला 19वें पारे का जो पहला रकू है, इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें हैं। तो अगर हम अंदर झांक के देखें अपने, असल बीमारी क्या है, ज़ात की बड़ाई का एहसास, इसी वजह से ये यकीन भी नहीं करते। बात ये है, ये कहते हैं ना हमारे ऊपर फरिश्ते आए, अगर फरिश्ते भी आ जाएं तो वो भी इंसानी शक्ल में आएंगे ना, फरिश्तों की भी ताब नहीं इंसान ला सकता, फरिश्तों को भी नहीं देख सकता, तो वो इंसानी सूरत में अगर आए तो फिर नहीं ये मानेंगे, फिर कहेंगे ये तो फरिश्ता है ही नहीं, ये तो इंसान है, और अगर अपनी असल सूरत में आ जाए तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आखिरत का इनकार करने वाले, उसकी उम्मीद ना रखने वाले, दरअसल अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, इतनी बड़ी चीज खुद को समझते हैं कि अल्लाह को भी अपने सामने देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे फिर हम मानेंगे, जब देखा नहीं है तो फिर क्यों माने। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम देखना चाहते हो, यौमा यरऊन अल मलाइका था ला बुशरा यौमा इज़िन लिल मुजरिमीन, जिस दिन दिख गए ना फरिश्ते, वो कोई मामूली दिन नहीं होगा, उस दिन फिर कोई खुशखबरी नहीं होगी मुजरिमों के लिए। हाँ मतलब हुआ, क्योंकि वो दिन क्या है, वो दिन है जो मौत का दिन है। देखिए ऐसे जिंदगी में तो फरिश्ते नहीं कभी भी नजर आ सकते ना, तुम्हें फरिश्ते देखने हैं, तो जिस दिन फरिश्ते नजर आ गए ना, फिर देखना वो दिन कैसा होता है, फिर उस दिन कोई खुशी की बात नहीं होगी तुम्हारे लिए की, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस पे तुम बड़े खुश हो सको। ला बुशरा, उस दिन कोई मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि वो दिन फिर कैसा होगा, तुमने तो सारी जिंदगी इस चीज का ही इंतजार किया ना कि हम मानेंगे उस वक्त जब फरिश्तों को देखेंगे। तो अब देखो ठीक है, फरिश्तों को देख लिया, लेकिन सॉरी अब तो टाइम ओवर हो चुका है, इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका है, अब तो बेल हो चुकी, अब तो सारा खेल ओवर, जिंदगी की मोहलत खत्म, अब तो कोई बुशरा नहीं तुम्हारे लिए। तो उस दिन क्या कहेंगे, वो यकूलून हिजरम महजूरा, उस दिन कहेंगे बंद किए जाओ, बंद किया जाना, पनाह पनाह। यानी असल बात यह है कि जब जैसे हम लोग होते ना, जब हमारे सामने कोई मुसीबत, कोई ऐसी एकदम परेशानी आती, तो हम कहते बचाओ बचाओ, तो अरबों में क्या होता था कि जब कोई मुसीबत देखते थे तो ऊंची आवाज में कहते थे हिजरम महजूरा, यानी पनाह पनाह, कि हमें पनाह चाहिए। तो ये इनका एक यानी मुहावरा समझ लें कि हिजरम महजूरा बोलते थे, तो उस दिन तुम कहोगे हाय पनाह चाहिए पनाह चाहिए। तो क्या होगा इनके साथ जिस वक्त ये फरिश्ते देखेंगे, फरिश्तों को देखेंगे, ये लोग जो आज नहीं मान रहे ना, कई आज भी एथिस्ट हैं जो बड़े बुलंदो बांग ये बोलते हैं कि किसी ने खुदा को देखा है भला, जब देखा ही नहीं तो माने कैसे। अब आपको कोई कह दे, अब आप क्या जवाब देंगे, वो कहते हैं हमें दिखा दो तो फिर हम मान जाएंगे, तुमने देखा है क्या, नहीं देखा तो कैसे मान रहे। तो ईमान तो है ही ईमान बिलगैब, जिस दिन देख लिया उस दिन ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं ईमान अल्लाह को चाहिए, ईमान है ही गैब पर ईमान। इसीलिए तो जब कुरान शुरू ही होता है वयुमिनून बिल गैब कहा गया, ईमान रखते हैं गैब पे, ये गैब पे ईमान जो रखने वाले हैं ना, वो ही आगे इस कुरान से भी हिदायत पा सकते हैं। जो गैब पर ईमान ही नहीं रखते, जिनको नहीं ईमान है कि अल्लाह है, जिनको नहीं ईमान के फरिश्ते हैं, जिनको नहीं ईमान है कि हाँ अल्लाह के रसूल आए थे, तो वो कैसे इसे हिदायत पा सकते हैं। ये लोग जब फिर उनको देखेंगे तो इनका हाल क्या होगा, अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में फरमाया आयत नंबर 93 में, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत, काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो जानकनी की तकलीफ में मुब्तला होते हैं, तो क्या होता है, वल मलाइका तु बासी तु अईदीहिम, फरिश्ते अपने हाथ फैलाते हैं इनकी तरफ, हाथ बढ़ा बढ़ा के कहते हैं इनको, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, लाओ अपनी जाने, आप निकालो, अल्यौम तुजज़ऊना अज़ाबल हून, आज तुमको अज़ाबल हून रुसवा कुन अज़ाब दिया जाएगा। जो तुम नाहक अल्लाह के बारे में कहा करते थे और अल्लाह की आयात के मुकाबले में जो तुम तकब्बुर किया करते थे, तो अब लाओ अपनी जाने। सोचे फरिश्ते खड़े में और जान निकालने के लिए आगे आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, और फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में आयत नंबर 50 में फरमाया, काश तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, ये जंगे बदर का वक्त है, तो वो इनके चेहरों और कूलों पर जरबे लगाते जाते थे और कहते थे, लो अब जलने की सजा का मजा चखो। और सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस क्या हाल होगा काफिरों का जिस वक्त फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारेंगे, मार मार के इनकी रूहें निकाली जाएंगी। यानी ऐसा अजाब होगा कि मामूली बात नहीं है। इनकी जान कैसे निकलेगी? मार मार के। और उस वक्त ये क्या कहेंगे फरिश्ते जब इनकी जानें कब्ज करने के लिए आएंगे, तो उस वक्त इनका क्या हाल होगा? सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वक्त वो झुक जाते हैं, कहते हैं हम तो कोई बुराई नहीं करते थे, हम तो नहीं कुछ करते थे, मा कुना नअमलु मिन सू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक और जगह पे आता है, हदीस में है ये, सॉरी कुरान में नहीं, ये हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब काफिर दुनिया से कूच करने लगता है और आखिरत की तरफ रवाना होता है, तो उस वक़्त क्या होता है इसके साथ? उसकी तरफ स्याह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब तुम फरिश्तों को मांगते थे ना, तो ये लो फरिश्ते आ गए। इतने भयानक शक्लों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं, और उनके पास टाट का कफन होता है, और वो उसे हद्दे निगाह के फासले पर बैठ जाते, जहां तक उसकी नजर जाती ना, उसको वही स्याह चेहरे नजर आ रहे होते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस रूह, निकल और चल अल्लाह के गुस्से की तरफ, उसके गजब की तरफ। उस वक्त रूह जिस्म के अंदर जाती है और फरिश्ते उसे इस तरह बाहर खींचते हैं जैसे कांटेदार लोहे की सीख गीली ऊन से निकाली जा रही हो। कांटेदार लोहे की सीख अगर आप कभी डालें, गीली ऊन हो ना, तो वो ऊन को चीरती हुई निकलती है, रेशा रेशा कर देती है। फरिश्ता इसकी रूह निकाल लेता है, तो दूसरे फरिश्ते लम्हे भर के लिए भी उसे मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उसे टाट के कफन में लपेट लेते। रूह जमीन पर किसी मुर्दार से उठने वाली बदतरीन सड़ांट जैसी बदबू इस रूह से आ रही होती है। फरिश्ते इसे लेकर आसमानों पर चढ़ते हैं, जहां कहीं इनका गुजर होता है, मुकर्रब फरिश्तों पर होता है, तो वो कहते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? जवाब में वो कहते हैं, ये फलां बिन फलां की है, ये गंदी रूह फलां की है। नहीं, ऐसा अंजाम होता है इनका। तो ये जो तुम मुतालबा कर रहे हो, ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जबकि मोमिनों का हाल तो इससे बिल्कुल उलट होता है ना, वो अपनी मौत के बाद खुशखबरियां सुनाए जाते हैं, आगे उनका भी जिक्र आएगा। और मैंने आपको कई दफा सूरह सज्दा की वो आयत बताई भी ना, कि जिन्होंने अल्लाह को अपना रब कहा और माना, फिर उस पर जमे रहे, उनके पास अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके पास हमारे फरिश्ते आते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था रब्बुन अल्लाह सुम इस्तकामू, फिर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की थी ना, फरिश्ते आके इनको कहते हैं, तुम ना डरो ना तुम गम करो, इन जन्नतों में जाने की खुशी मनाओ जिनका तुमसे वादा दिया जाता रहा, हम तुम्हारे वाली हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, तुम जो कुछ चाहोगे पाओगे और जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो मौजूद हो जाएगी, बख्शने वाले मेहरबान अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारी मेजबानी होगी। तो मोमिन को तो वो आगे कहते हैं, पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, तो अल्लाह की रहमत की तरफ चल, वो तुझसे नाराज नहीं है, तो फिर रूह क्यों ना जाना चाहेगी? तो कहेगी कि मुझे जल्दी लेके जाओ ना। तो हर नेक हो या बद हो, फरिश्तों को तो सब नहीं देखना, तो इतनी जल्दी क्या है? तुम जब फरिश्तों को देखोगे ना, आज तुम्हें बहुत शौक है देखने का, जब तुम देखोगे तो तुम्हें फिर उनसे कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पे यकूलू ना हिजरम महजूरा, एक तो मैंने आपको माना बताया ना कि वो खुद कहेंगे काफिर, दूसरा माना क्या है कि फरिश्ते कहेंगे इनसे हिजरम महजूरा, जब ये उनको कहेंगे ना कि हमारे लिए भी जन्नत हो, हमें भी जन्नत दिखाओ, हम भी जन्नत चाहते हैं, तो वो कहते हैं हिजरम महजूरा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगी ये, तुम्हारे लिए हराम है, तुम रोक दिए गए। और दूसरे दुनिया में भी जब आएंगे उनकी जान निकालने के लिए, तब भी फरिश्ते ये कह सकते हैं, बस रुक जाओ, एंड्स अप, खत्म तुम्हारा काम अब, दैट्स इट।